आजानुलंबित भुजो कनकाव दातो संकीर्तनेक पितरो कमलाय ताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो आजकल कौन सा महीना चल रहा है? तो कार्तिक का क्या महत्व है आदमी जानता है क्या? क्या महत्व है कार्तिक का? महात्म्य। सो जो कार्तिक मास है इसका जो महात्म्य है वो पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दे रखा है, ठीक है। और उसमें बताया कि अगर आप अपना सारा धन अगर आप दान कर दोगे तो उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना कार्तिक मास में भगवान को दीपदान करने से मिलेगा। तो दीपदान का आपने अरेंज किया होगा। सो हमारे रघु प्रभु हैं। सो रघु तो इनका भौतिक नाम है, इनका आध्यात्मिक नाम है रामचंद्र रघुवीर प्रभु। सो और आपकी वाइफ का क्या नाम है? पालिका केशवी माता। सो हमारे रामचंद्र रघुवीर प्रभु और पालिका केशवी माता जी जो तिलक लगा रहे हैं, अभी आप तिलक रहने दो। सो इन्होंने मिल के आपके लिए दीपदान का इंतजाम किया ताकि ही आप अपना सारा संपत्ति दान नहीं भी कर पाओ तो भी उससे कई गुना ज्यादा फल आपको मिले, ठीक है। आवश्यकता है कि आप श्रद्धा पूर्वक भगवान को दीप दिखाइए, ठीक है। अगर कार्तिक मास में सिर्फ 3 दिन भगवान को दीपदान किया तो देवी देवता आप लोगों की पूजा करेंगे, इतना पुण्यवान हो जाओगे आप। और पद्म पुराण में लिखा है कि जो पूर्वज है, जो पितर है ना, अभी पीछे श्राद्ध भी आए थे ना, जो पितर है वो इंतजार करते हैं कि कब हमारे खानदान में कोई ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो कि कार्तिक मास में भगवान कृष्ण को दीपदान करेगा। क्यों क्यों प्रतीक्षा करते हैं? क्योंकि अगर कार्तिक मास में आपने भगवान को दीपदान किया, पूरा महीना अगर आप दीपदान करोगे, अभी हम लास्ट में आपको दीपदान की विधि बताएंगे आपको। सो दीपदान करने से आपके खानदान में आज तक जितने लोग पैदा हुए हैं, जितने उस शुरू से लेकर आज तक जितने पैदा हो चुके हैं और जितने आगे पैदा होने वाले हैं वो सब मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे सिर्फ भगवान को दीप दिखाने से, है ना। तो आज तो हम आपको बता देंगे भगवान को दीपदान कैसे करना है, बाकी आप सब छोटे छोटे दिए खरीद लीजिए बाजार से और घी के दिए बनाएं और रोज अपने घर में भगवान को दीपक दिखाएं, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना उससे लाभ मिलेगा, है ना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सारे भक्त हैं हमारे, ये रोहित प्रभु हैं, अखिलेश, रामचंद्र, रघुवीर प्रभु, सो ये सब मिलके अगले महीने 20 तारीख को, 20 नवंबर को संडे के दिन आपके यहाँ पर, आपके इलाके में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन करें। और पिछले 2-3 साल से आयोजन हो रहा है हर साल, और इस बार रामचंद्र रघुवीर प्रभु लगे हुए हैं पूरी मेहनत से कि पिछली बार से बहुत ज़्यादा अच्छे से भव्य तरीके से मनाया जाए। तो आप सब लोग उसके अंदर सहयोग करो। सो आप पूछोगे हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, है ना? तो सबसे सहयोग करने के कई तरीके हैं कि आप पैसा दे दो, कुछ फल सब्जियां इत्यादि दे दो, फूल दे दो। लेकिन 2 तरीके जो सहयोग करने के हैं वो सर्वोत्तम है, उससे बढ़िया तरीका नहीं है। पहला तरीका है कि आप सब लोग अच्छे से, खूब अच्छे से मेकअप वगैरह करके सज सवर के आए और जगन्नाथ जी के रथ के साथ चले, है ना? और दूसरा जो सहयोग है वो ये है कि आप अपने परिवार वालों को, मित्रों को, पड़ोसियों को चाहे जबरदस्ती प्रार्थना करके, कुछ भी करके उनको अपने साथ रथ यात्रा में लेके आओ। क्यों लेके आओ, उसके पीछे कारण है। हम ऐसे नहीं कह रहे कि लेके आना चाहिए, है ना? पांच तरह की मुक्ति बताई गई है हमारे शास्त्र में। सायुज्य, सामिप्य, सारूप्य, सारिष्ट्री, कितने? 4। और सालोक्य। सालोक्य, सो ये 5 तरह की मुक्ति है। सायुज्य मतलब जो भगवान के शरीर से जो रोशनी निकल रही है उसके अंदर लीन हो जाना। पूरा हिंदुस्तान इसी के पीछे भाग रहा है, लेकिन जो वैष्णव हैं इसको अच्छा नहीं समझते। जो आलसी हैं वो सोचते हैं कि किसी तरह से भगवान के हम जो रोशनी निकल रही है शरीर से उसमें समा जाएं, निष्क्रिय पड़े रहे। लेकिन वो उसमें बहुत सुरक्षा है, सुख है उसमें, लेकिन आनंद नहीं है। जैसे उदाहरण दें आपको कि अगर कोई स्त्री शाम के समय, आजकल ऑफिस वगैरह में लेट हो ही जाती हैं, लड़कियां भी काम कर रही हैं, नहीं? पहले जो स्त्रियां थी बहुत सुरक्षित थी। मैंने खुद देखा है कि हमारे फैमिलीज में कभी भी स्त्री अकेली घर से बाहर नहीं निकलती थी, नहीं? आपके हो सकता है आपके यहाँ भी अभी ये प्रचलित हो, कोई ना कोई साथ में अवश्य रहेगा। कभी भी स्त्री अकेली घर से बाहर नहीं निकलती थी हमेशा, और जो मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी नजर रहती थी। हर व्यक्ति सोचता था कि हमारी बहू बेटी है, नहीं? आजकल बिल्कुल जमाना उलट गया एकदम से। आजकल जो बड़े बुजुर्ग है अपने घर की बच्चियों को ही भोग की दृष्टि से देख रहे हैं। ये सब एक बहुत ही फेमस गुरु है, काणा गुरु, आप जानते हो सब काणे गुरु को? काणे गुरु का नाम नहीं सुना आपने, है? आपने जी किसी ने नहीं सुना कान्हा गुरु? कौन है कान्हा गुरु? हाँ टीवी है, एक आंख है ना उसकी, एक ही तो आंख है, उसी में सब कुछ दिख रहा है, नहीं है कि नहीं है कान्हा? नहीं तो दो होती ना आंखें, एक ही आंख है उसकी। तो जो कान्हा गुरु है उसमें इतनी भोग वासना, काम वासना, यही दिखाया गया है कि जो परिवार की स्त्रियां भी हैं, एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रच रही है, दूसरी पहले के प्रति षड्यंत्र रच रही है। कोई ये दिखाई नहीं रहा कि एक ने दूसरे के प्रति त्याग किया, दूसरी ने तीसरे के प्रति त्याग किया, पूरा संयुक्त परिवार इसी के ऊपर चल रहा था, नहीं? वो काम वासना इतना घोट घोट के पिला दिया है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी एक दो दिन पहले, पता नहीं आज या कल, वो टीवी में दिखा रहे थे कि एक व्यक्ति बूढ़ा बिल्कुल मरने के किनारे है, अपने नातियों के ऊपर उसने बुरी नजर, आपने किसने देखा था? देखा किसने? तो उन्होंने बहुत पिटाई की उसकी, है ना, चाटे मारे, घुसे भी मारे। पहले जमाने में मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग अपनी बहु बेटियां समझ रहे थे, आज के जमाने में अपने घर में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्या तरक्की कर लिया हमने, क्या इसको तरक्की कहते हैं? हाँ, तरक्की की परिभाषा ये नहीं है, तरक्की की परिभाषा है कि क्या आप जीवन का मतलब समझते हो, या क्या आप मृत्यु का मतलब समझते हो? मृत्यु क्या है? मृत्यु एक परीक्षा है, और जो जीवन है वो आपको मौका मिला हुआ है उस परीक्षा की तैयारी करने के लिए। अभी कुछ छोटे बच्चे भी बैठे हैं, अभी इनका पीछे कोई पेपर हुआ होगा, अभी पेपर हुए होंगे इस महीने या पिछले महीने, तो पेपर एक ही होता है, कई लोगों को आसान लगता है, कई लोगों को मुश्किल लगता है। तो पेपर आसान था कि मुश्किल था? या पेपर आसान होता है कि मुश्किल होता है? जिसने तैयारी की होती है उसके लिए, और जिसने नहीं की होती उसके लिए मुश्किल है, नहीं? पेपर तो वही होता है। पीछे मैं अपने बच्चे को 12वीं का एग्जाम दिलाने ले गया था, सो वो पता नहीं मैथ्स का पेपर था या कौन सा था, तो बहुत सारे बच्चे रोते हुए बाहर निकले, स्पेशली जो लड़कियां वो रो भी जल्दी पड़ती हैं, और कई बच्चे बड़े खुश बाहर निकले। तो मैं अपने बच्चे की वेट कर रहा था, तो मैंने पूछा कई बच्चों से, अच्छा कैसा पेपर कैसा था? बोला पेपर बहुत ही टफ था, आज तक इतना टफ पेपर नहीं आया, इतना मुश्किल पेपर आज तक नहीं आया। कई बच्चे कह रहे हैं पेपर आसान था, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक्चुअली में पेपर ना आसान था ना मुश्किल था। आप पे निर्भर करता है कि बच्चे ने तैयारी अच्छी की है तो आसान है, तैयारी नहीं की तो मुश्किल है, नहीं ऐसे ही है ना? जो जीवन है वो तैयारी करने का आपको अवसर दिया जा रहा है, और जो मृत्यु है वो परीक्षा की घड़ी है। क्या परीक्षा की घड़ी है? कि मृत्यु के समय निर्धारित होगा कि आपकी गति क्या होने वाली है। आमतौर पर बिल्कुल शरीर जर्जर हो जाता है, बिल्कुल, है ना, हाथ पैर काम नहीं करते, और बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, बल्कि सारे लोग, मैं कई लोगों से बात करता हूँ तो बोलते हैं कि हम तो भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमें चार पैर पे मत लिटाइयो, उठा लियो। अरे तुम्हारे कर्म हैं ऐसे क्या? क्या तुमने ऐसा किया कि तुम अपने ही मल मूत्र में नहीं पड़े रहोगे? क्या ऐसा कुछ कर भी रहे हो? क्या भगवान तुम्हारे नौकर हैं कि हे भगवान ऐसा कर देना फिर अपना टीवी देखना शुरू? तो क्या भगवान को बेवकूफ समझ रखा है? अगर हमने पूरा जीवन तैयारी की है तो मृत्यु के समय हम भगवान का आसानी से स्मरण कर पाएंगे। अगर हमने पूरा जीवन भोग किया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बटन लगा हुआ आपके दिमाग में और बटन घुमाया और पूरा जीवन भोग किया और लास्ट में भगवान का स्मरण हो गया। ऐसा नहीं होगा, है ना? अगर आप ऐसा सोचते हो तो माफ कीजिएगा आपको निराश करने के लिए, ऐसा नहीं होगा। जो पूरा जीवन आप करोगे मृत्यु के समय पूरी पिक्चर बन के आपके सामने घूमेगा। हम बात कर रहे थे स्त्री की कि वो निकली लेट ऑफिस से घर के लिए चली, और घर के लिए चली तो पीछे चार पांच बदमाश लगे उसके, उसका पीछा करना शुरू किया और थोड़ी तेजी से, सुनसान रास्ता था, कोई आसपास मदद करने के लिए आजकल आता भी नहीं है, क्या पता उसके पास चाकू हो बंदूक हो, नहीं कुछ पता नहीं। तो भाग रही थी वो, पीछे वो बदमाश भाग रहे थे, तो क्या हुआ कि उसको एक कमरा दिखाई दिया, उसको दरवाजा खुला हुआ था, तो एकदम झट से कमरे में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली और वो बदमाश दरवाजा खटखटा रहे हैं, खोलो खोलो। लेकिन उस स्त्री को पता है कि अंदर नहीं घुस सकता, ये दरवाजा लॉक्ड है, लोहे का दरवाजा है, अंदर नहीं घुस पाएगा। तो क्या वो स्त्री सुरक्षित महसूस करेगी कि नहीं करेगी? क्या वो स्त्री सुरक्षित महसूस करेगी? आप बोल नहीं रहे आप? नहीं करेगी। चलो वो कमरे में बंद है, एक घंटा बीत गया, अब उसके दिमाग में क्या आएगा विचार अगला? सुरक्षित है वो, अगला विचार क्या आएगा? और अपने घर के बारे में सोचेगी? नहीं सोचेगी। सोचेगी ना कि मेरा बच्चा भूखा होगा और पति घर आने वाले होंगे, जाके खाना बनाना। तो क्या वो सुरक्षित अनुभव कर रही है? क्या खुश हो पाएगी? यही हालत होगी जब हम ब्रह्मज्योति में विलीन हो जाएंगे, है ना? हम सुरक्षित तो हो जाएंगे लेकिन सुख का आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे, है ना? इसलिए जो भक्त हैं, जो वैष्णव है, वो इन, थोड़ा गला खराब है, इन पांच जो मुक्तियां हैं उनमें से जो पहली मुक्ति है सायुज्या, कि भगवान के शरीर की रोशनी में विलीन हो जाना, उसके ऊपर थूकते हैं वो। वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, भगाओ इसको यहां से। फिर एक मुक्ति है सामीप्य। सामीप्य का मतलब है हमेशा भगवान के साथ रहना, जैसे भगवान की बंसरी है, हमेशा साथ रहती है ना, मोर पंख है, हमेशा भगवान के साथ रहता है, गायें हैं, हमेशा भगवान के साथ रहेगी काया, है ना। तो भगवान के आगे पीछे दाएं बाएं भगवान के साथ रहेंगे। तो मतलब इतने करीब रहोगे भगवान के, क्या भगवान को देख सकते हो हर टाइम पे, भगवान को छू सकते हो, खेल सकते हो भगवान के साथ। ऐसे भगवान के कितने ग्वाल वाले सब खेलते रहते हैं भगवान के साथ, नहीं, छिपन छिपाई, पकड़म पकड़ाई और कई तरह के खेल खेलते हैं। और ना केवल खेलते हैं, भगवान को हरा भी देते हैं। तो भगवान को हरा दिया, भगवान को हरा दिया, तो भगवान को कहते हैं हराने के बाद, भैया आप सजा भुगतो। तो क्या सजा भुगतनी है, घोड़ी बन जाओ। तो भगवान के कंधे पर चढ़ जाते हैं और भगवान को घोड़ी बन के यहां से वो वहां तक लेके जाएंगे चल के। हाँ, तो क्या इसमें सुख है कि नहीं है, परम सुख है इसमें। तो ये सामिप्य है, फिर सालोक्य है मुक्ति। क्या चाहिए, वो बैग हटा दो ना। तो फिर एक मुक्ति है सालोक्य। सालोक्य का वो बैठ जाएंगे कुर्सी पे, आप सब कुर्सी को देखना शुरू कर दिया आप सब ने, कैसा कितना घटिया ध्यान है आप लोगों का। मैं आपसे इतनी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, आप कुर्सी को देख रहे हो, मतलब क्या बेवकूफी है, नहीं। आप लोग पलक भी नहीं झपकाते जब देखते हो सास भी कभी बहू या वो पता नहीं कौन तारक मेहता, पलक भी नहीं झपकाते। यहाँ पे वो आई है कुर्सी के लिए, सारे वो कुर्सी को देखना शुरू कर दे, क्या है कुर्सी में, मतलब क्या पागलपन है। हाँ, आपको एक बात बताई जा रही है उसकी तरफ ध्यान दो ना, नहीं। सो पहली मुक्ति हमने कौन से बताई थी, सायुज्या, और दूसरी हमने बताई थी सामिप्य, भगवान के पास रहना। तीसरी है सालोक्य, मतलब जिस लोक में भगवान है उस लोक में रहना। जैसे भगवान जब पृथ्वी पे आए तो आप भी आ जाओ, जब भगवान वापस वैकुंठ जाए आप भी चले जाओ वापस, भगवान के लोक में रहो। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे रहो, लेकिन जिस ग्रह पे जिस लोक पे भगवान है उस लोक में आप भी मौजूद हो, बहुत बड़ी बात है, ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। फिर एक है सारिष्ठी, कि जैसे भगवान में शक्तियां हैं, भगवान ग्रह बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो जो भगवान में जैसे शक्तियां हैं वो शक्तियां आप में आ जाएं। और पांचवा है सारूप्य। सारूप्य मतलब जिस प्रकार भगवान का चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्मा, हाँ पद्मा मतलब कमल का फूल, तो आप सबके चार हाथ हो जाएंगे और एकदम सुंदर आप हो जाओगे श्याम वर्ण के, और अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आप भ्रमण कर पाओगे, जैसे नारद जी करते हैं भ्रमण, किसी के वीजा थोड़ा ना लगाते हैं, जहां दिल करता है चले जाते हैं, नहीं। तो ये पांच तरह की मुक्तियां हैं, सायुज्य, सामिप्य, सालोक्य, सारिष्ठी और सारूप्य, भगवान जैसा रूप होना। तो भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि अगर कोई जगन्नाथ जी के रथ के आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी चल रहा है, चाहे वो चंडाल ही क्यों ना हो, चंडाल कहते हैं जो कुत्ते का मांस खाता है, चाहे वो चंडाल ही क्यों ना हो, अगर कोई गलती से भी जगन्नाथ भगवान के रथ के आगे पीछे दाएं बाएं अगर चल दिया तो उसको सामीप्य मुक्ति प्राप्त होगी, मतलब हमेशा भगवान के संग रहेगा, सिर्फ जगन्नाथ जी के रथ के साथ चलने के कारण, बस और कुछ नहीं करना। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि लाखों रुपए दान दे दो, है ना, अगर आप दोगे तो हम ले लेंगे, लेकिन हम आपको नहीं कह रहे, हम आपसे कुछ ये नहीं कह रहे कि आप ढेर सारा भगवान के लिए कुछ परिश्रम करो, सिर्फ आप आओ और जगन्नाथ जी का जब रथ चलेगा आप साथ चल दो बस। और अगले श्लोक में भविष्य पुराण के लिखा हुआ है कि अगर कोई नहीं चलता, जगन्नाथ जी का रथ चल रहा है और आपने देखा और मुंह फेर लिया, तो कोई ब्राह्मण भी होगा चंडाल बन जाएगा। सो भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आमतौर पे प्यासा कुएं के पास जाता है, नहीं, यहां तो कुआं प्यासे के पास आ गया। भगवान जगन्नाथ चाहते हैं कि आप उन्हें प्रसन्न करो, और आप आओगे और भगवान जगन्नाथ के सामने आप आके हाथ जोड़ोगे तो भगवान जगन्नाथ आपको देख लेंगे, बोलेंगे ठीक है आ गए, बहुत अच्छा, इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाए, है ना। तो ये अवसर है आप लोगों के पास कि आप सब, ये जो जगन्नाथ जी आपके इलाके में आ रहे हैं, आप उसका लाभ उठाओ और अपने सारे परिवार वालों को, मित्रों को, आप सबको लेके आओ, क्योंकि आप अकेले अगर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लोगे तो आप अकेले भगवान के धाम चले जाओगे, वहां जाके आपको अकेलापन लगेगा, नहीं। सो पूरी फैमिली को लेके आओ, मित्रों को लेके आओ, ताकि सारे आप इकट्ठे भगवान के धाम जाओ, ताकि वहां पे आपको अकेलापन नहीं लगेगा, ठीक है ना, और वहां पे सब मिलके अच्छे से भगवान की सेवा करना और खूब खेलना कूदना। वहां पे जो भगवान का धाम है, वहां पे जो चलना है वो नाचने के समान है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, चलता है तो नाचता ही है वो, नहीं, आप कुछ भी बोलोगे वो गाने के समान है, आप जो खाओगे वो खून बन जाएगा, कोई मल मूत्र कुछ वहां पे नहीं है, ना वहां पे भूतकाल है ना भविष्य काल है, सब आज अभी जो समय चल रहा है वही चलता रहेगा हमेशा। आप बोलोगे ऐसा कैसे, वहां पे ऐसा ही है, इसीलिए उसको बोलते हैं अचिंत्य। हम सोच नहीं सकते कि कैसे होगा, ऐसा कैसे संभव है कि अभी आधा घंटा पहले कुछ और चल रहा था, एक घंटा पहले आप लोग अपने अपने घर में थे, तो ऐसे ही वहां पे भी तो ऐसा ही होता होगा, वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे जो भगवान की वंशी है वो भी चेतन है, वो भी हर चीज को महसूस करती है, भगवान का जो मोर मुकुट का जो पंख है वो भी हर चीज महसूस करता है, पेड़ पौधे भगवान को देख के आंसू बहाते हैं और वो आंसू जब गिरते हैं तो किस रूप में गिरते हैं, शहद के रूप में गिरते हैं, आप आराम से नीचे खड़े हो शहद खाना फ्री में, कोई मधुमक्खी का चक्कर नहीं है वहां पर। सो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब ये कार्तिक मास में हर रोज अपने घर में भगवान को दीपदान करो। जगन्नाथ जी की अब रथ यात्रा आ रही है तो आप सब उसमें भाग लो और सब लोगों को लेके आओ, है ना। आप भगवान को कुछ फूल अपने घर से लाके ऑफर कर देंगे, दो चार पत्तियां भी ऑफर कर देंगे, अर्पण कर देंगे, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतोभयात्, कि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, आपने मेरी कुछ थोड़ी सी भी सेवा की, त्रायते महतोभयात्, बड़े से बड़े खतरे से त्रायते आपकी रक्षा हो गई, है ना। सो आप सब इस अवसर का भाग, इस अवसर का लाभ उठाओ और अच्छे से भगवान की रथ यात्रा में भाग लो। और ये कार्तिक मास ऐसा महीना है कि इस महीने में दिवाली भी आती है। अच्छा, दिवाली का क्या महत्व है? हैं? क्या महत्व है दिवाली में? आप लोग दिवाली में किसकी पूजा करते हो? लक्ष्मी गणेश की। क्यों? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। वो कैसे होगा ये? तो वो लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हैं, उसमें जिस उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है वो व्यक्ति कहाँ है? इसके अंदर भगवान राम कहाँ है? जो लक्ष्मी गणेश की पूजा में भगवान राम किधर है? आप करते हो? हाँ। सो जो लोग बिना राम के लक्ष्मी की पूजा करते हैं, बिना राम के लक्ष्मी की पूजा किसने की थी? किसने की थी? सही कह रहे हैं। सो जो बिना राम के लक्ष्मी की पूजा करते हैं वो लोग रावण के समान हैं। और रावण का क्या हाल हुआ था? सो हम लोग इतने सालों से लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हैं, सुख संपत्ति तो आने नहीं, क्योंकि गलत कर रहे हैं। दिवाली जो त्योहार है, दिवाली त्योहार है भगवान राम को समर्पण करने का। जब भगवान राम अयोध्या में प्रवेश किए थे तो सारे अयोध्या वासियों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे कि आपका घर है, आप आओ और आप राज करो, हम सेवक हैं। वो ये नहीं कह रहे थे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बिल्कुल बोगस बात है। सुख संपत्ति आए ताकि मैं भोग करूं, इसमें भगवान राम का है। दिवाली अवसर है कि हम भगवान राम को प्रार्थना करें कि हे राम, आप प्लीज, आपका ये घर है जैसा भी है छोटा सा, आप प्लीज आप आए और ये आपके निमित्त है, आप इस घर पे और हमारे हृदय पे राज करें। नहीं, अगर आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो फिर देखिए आपके घर में सुख और शांति आएगी कि नहीं आएगी। सुख और शांति पैसे से नहीं आती, सुख और शांति भगवान की कृपा से आती है। स्वामी बनने में सुख नहीं है, दास बनने में सुख है। अगर हम अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर देंगे, जैसे इसके ये क्या नाम है प्रभु, नवनीत, ये नवनीत प्रभु के गोदी में एक छोटा सा बच्चा बैठा है, हाँ इसका बच्चा है, वो बच्चा इनसे कुछ मांगे या नहीं मांगे, क्या जरूरत पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे। ये बच्चा क्या कर रहा है, इसने अपना सब कुछ अपने पिता को समर्पित किया हुआ है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि आप मुझे अच्छा खाना खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे, पिता अपने आप खिलाएगा ही खिलाएगा, है ना, पहले बच्चे को खिलाएगा फिर खुद खाएगा, नहीं। लेकिन बच्चा बड़ा हो गया, वो बोलेगा आपने मेरे लिए क्या किया है, हाँ अरे मूर्ख तू इतना बड़ा कैसे हो गया, तुझे क्या पता तेरे लिए कितने त्याग किए, क्या किया आपने मेरे लिए। तो पिता कहेगा भाई साहब गलती हो गई, आप जैसा आपको अच्छा लग रहा है आप कीजिए। तो उस क्षण से वो बच्चे को अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अगर हम ज्यादा दिमाग चलाएंगे सुख संपत्ति घर आए तो भगवान कहेंगे इतना कुछ कर दिया फिर भी मांगे जा रहे हैं, क्या मतलब है। भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं ये बताओ। सो दिवाली जो है, दिवाली के दिन हमें ये प्रार्थना नहीं गानी चाहिए सुख संपत्ति घर आ गए, हमें यह बोलना चाहिए कि जो भी है आपने बहुत कुछ दिया है और ये सब आप ही का है, आप जैसा चाहें इसको इस्तेमाल करें। तो क्या भगवान सब बोरी में भर के ले जाएंगे क्या करेंगे, भगवान कहेंगे ये अच्छा बच्चा है इसको और सुविधा दे दो, यही तो कहेंगे भगवान। अगर कोई बच्चा अपने पिता को बोलेगा लो पापा, पापा से ही पैसे लेके पापा को बोले लो टॉफी खाओ, तो क्या पिता उसकी टॉफी की थैली छीन के सारी टॉफियां खा लेगा, वो कहेगा नहीं तुम खाओ यार ये लो 800 रुपये आइसक्रीम भी खा लेना बाद में। भगवान भी ऐसे ही है, भगवान से मांगो मत, भगवान को दो, भगवान को भगवान की सेवा करो, ये दिवाली है। और दिवाली के दिन एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, क्या कह रहे हो, ये हमारे अखिलेश प्रभु साइड कमेंट्री करते रहते हैं ये नटखट बच्चा है ये हमारा जो उत्साहित भक्त होता है ना उसकी निशानी होती है, जो एनर्जी होती है वो एनर्जी को रोकना बड़ा मुश्किल होता है तो आप सबको जैसा अखिलेश में जो जोश है आप सबको वैसा जोश अपने अंदर लेके आना चाहिए और बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। तो दिवाली वाले दिन एक और बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी अद्भुत घटना हुई थी, उसके बारे में हम आप सबको अगले हफ्ते बताएंगे आपको। क्या सस्पेंस, सस्पेंस बना के रखा, अगली बार में तो बुलाना है नहीं। सो अभी हम सब मिलके भगवान का दीपदान करेंगे और आप सब बैठे रहिएगा। सो फ्रॉम एक अभी हम आप सबको जो भजन है एक ये हम आप सबको कॉपी दे रहे हैं, तो ये भजन संस्कृत में है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। उसके सामने उसकी हिंदी भी दे रखी है हर श्लोक की। और आप बोलो जी मुझे तो संस्कृत बोलनी आती नहीं है, तो आप टूटी फूटी बोलेंगे चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप बोलो कि मैं टूटी फूटी भी नहीं बोल सकता या बोल सकती हूँ, तो प्रभु चुप रहो। तो वो उसके सामने जो हिंदी में अर्थ दे रखा है, आप वो घर में आप आराम से पढ़िए उसको। ये जो कागज हम दे रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कागज है, आपको बाजार में नहीं मिलेगा ढूंढने से, चाहे आप कितने पैसे खर्च करो। और ये जो प्रार्थना है, ये जो भजन है, ये भगवान को बहुत ही प्रिय है। भगवान सब कुछ भूल जाते हैं जब ये प्रार्थना भगवान के सामने भूल जाते हैं। तो हम सब बैठकर आराम से बहुत धीरे धीरे हम सब ये प्रार्थना बोलेंगे। जैसे अभी हमने कीर्तन किया था, पहले मैं बोल रहा था आप सुन रहे थे, फिर आपने बोला मैंने सुना, है ना। तो हम सब धीरे धीरे इसको साथ में बोलेंगे, पहले मैं बोलूँगा आप सुनिए फिर आप बोलिए, ठीक है। सो ये प्रार्थना 8 श्लोक है। तो ये करने के बाद यहाँ दिए कहाँ रखे, इधर ले आओ ना, वहाँ भी अच्छा, हाथ धोने का भी है। So